الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلحي بيانات اكثر ہوتے ہیں ایک اکثر سے یاد اس بیانات کا سلسلہ کر رہا ہے اور آپ حضرات بھی اس کو سن رہے ہیں اس مرتبہ بھی کہا کہ آپ کو کچھ وہ باتیں بتائیں جو ایک اطراف میں اپنے حضرت سے خاص محفلوں میں سیکھا ہے تاکہ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے بنانا ہے کیا کرنا ہے لہٰذا آج کی محفل جو ہے وہ عام بیانات والے انداز سے نہیں ہوگی بلکہ ایک کلاس کے انداز سے پڑھائی جائے گی اسی لیے کتاب کو سامنے رکھ کے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ آج صرف کلاس پڑھائی جا رہی ہے کیونکہ تصوف کے بارے میں ہم بھولتے رہتے ہیں لیکن سمجھے بھی تو آئے نا تو آخر یہ کیا چیز ہے اور جب فرض آ جائے گی تو پھر عمل کرنے کا بھی مزہ آئے گا اور آگے بڑھنے کو جیتا ہے انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے ایک اس کا جسم اور دوسرا اس کے اندر روح ہے اور اس بات کو یہ سمجھے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہو جاتا ہے تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو سیلز آپس میں ملتے ہیں وہ لیونگ ہوتے ہیں ان کے اندر لائف ہوتی ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے لیکن بچے میں جو حرکت آتی ہے وہ ایک خاص اس کی گروتھ کے بعد آتی ہے یعنی جب وہ بچہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے اندر ایک اس کی شکل بن جاتی ہے پھر اچانک اس کے اندر حرکت آ جاتی ہے جس کو یہ سمجھے کہ اس وقت اس میں روح کو داخل کیا جاتا ہے حالانکہ سائنس کی نگاہ میں وہ سب ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے اس کے آرگنز بن رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کی زندگی نہیں ہوتی بعد میں اس کے اندر روح کو دھان دیا جاتا ہے جو کہ سائنس کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کیا وقت ہوتا ہے اور کس چیز اس میں روح ڈالتی ہے اور کیا دی جاتی ہے آپ اس کو دوسرے انداز سے سمجھیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اس کی ڈیتھ ہو گئی لیکن اگر اسی وقت اس انسان کے اندر سے اس کے آرگنس کو نکال لیا جائے تو وہ ٹرانسپلانٹ کیے جا سکتے ہیں یعنی وہ زندہ ہوتے ہیں مرے نہیں ہوتے سائنس کے حساب سے وہ مرے نہیں ہوتے اس کا کارنیا نکال لیا جائے اس کے باقی آرگنس نکال لیا جائے تو وہ فوٹے ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت اناؤنس کر لیا جاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یعنی وہ روح نکل گئی اس کے اندر سے اور ڈاکٹر نے بھی اس کو ڈیتھ اناؤنس کر دیا لیکن آرگن ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو وہ فنکشن ہو جاتے ہیں آرگن کبھی بڑے ہوتے سائنس کے حساب سے تو وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات ایک لیسن ہمیں مل گیا کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ایک جسم اور ایک روح جسم بنتا ہے بعد میں اپنی روح داخل کی جاتی ہے روح نکال دی جاتی ہے جسم بیکار ہو چکا ہوتا ہے ختم ہو جائے اس لیے اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے اور روح کا تعلق عالم امر سے ہے. اب ان دونوں کے ساتھ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. عالم خلق جو ہے اللہ رب العزت نے بتدریج اس کو بنایا, ایک پروسیس کے ساتھ اس کو بنایا. دوسرے لفظوں میں ایک سائنٹیفک وے سے دنیا کو بنایا گیا جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا فی ایام, یعنی ہم نے اس تمام کائنات کو چھ دنوں میں بنایا اور ان چھ دنوں میں خلق الارض فی یومین, اس دو دنوں میں ہم نے اس کے اندر باقی سارا سسٹم جو ہے دنیا کا رزق وہ سارا رکھ دیا گیا. اب اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک پودے کو جب لگایا جاتا ہے تو وہ بیج سے درخت آہستہ آہستہ بنتا ہے, یکدم نہیں بن جاتا ہے, ایک پروسیس سے گزرتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک پروسیس سے گزرتی ہے, ماں کے پیٹ کے اندر آہستہ آہستہ وہ پروسیس ہوتا ہے, پھر اس دنیا میں آتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اس کے اندر پروسیس ہوتا ہے اور پھر وہ بیٹھنے کے, چلنے کے, اٹھنے کے, دوڑنے کے قابل ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ انسان کا بچہ بولنا شروع کرتا ہے. پہلے پہلے تو صرف ویسے ہی آوازیں نکالتا ہے, ماں باپ اسی پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی بات وہ کہتا ہے, پھر اس کے بعد وہ جوانی کی طرف آتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑھاپا ہوتا ہے اور اس کی زندگی تمام ہوتی ہے. ایک پورا پروسیس ہے انسان کی زندگی کا اور وہ اس طریقے سے چلتا ہے. لیکن جو اس کی روح ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت نے اس کو اس پروسیس سے ہی بنایا. اگر اس پروسیس سے ایک بات اور بھی سمجھ لی جائے کہ کیونکہ یہ دنیا کا نظام عالم خلق جو ہے کیونکہ یہ پروسیس سے بنا ہوا ہے, سائنٹیفک وے سے بنا ہوا ہے اور انسان کو مقام تقسیم دی گئی ہے, یعنی وہ اگر اس سائنٹیفک وے کو سمجھ لیے تو وہ اس کو مدد نہیں کر سکتا ہے. آج لوگ کلوننگ کی باتیں کرتے ہیں کہ بھی وہ یہ چینج کر دیں گے, وہ چینج کر دیں گے اور پتہ نہیں زمین سے آسمان سے جا رہے ہیں اور چاند پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں, سسٹم کو سمجھتے ہیں, اپنی مرضی سے اس کی چینج کرتے ہیں, بالوں کے کو اندر وہ پھولوں کے انگوں کو بدلتے ہیں, سب چیز کرتے ہیں. یہ سارا اس لیے وہ کر لیتے ہیں کہ ان کو مقام تصدیق دیا ہوا ہے, وہ اس سسٹم کو سمجھ لیتے ہیں اس لیے اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس کو کریٹ نہیں کر سکتے. یہاں ایک بات سمجھ آئی چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہیں کہ وہ نان لونگ چیز کو لونگ بنا سکتے ہیں اس بات پاسبل, ایسا نہیں وہ کر سکتے, لیکن اس طرح مینیپولیشن کو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی. لیکن اسی سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں, وہ اس بات سے انکار کر دیتے ہیں. جو ذہنی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب یہاں تک مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ساری چیز جو ہے عالم خلق کی ہی ہے, وہ عالم امر سے انکار کر دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ایک اور عالم جو عالم امر سے بنایا جسے کن کہہ کر اللہ رب العزت نے بنا دیا, کن فیاسوں اور پھر وہ ہو گیا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر تمام آخرت کی جو چیزیں ہیں, جنت ہے, جہنم ہے, فرشتے ہیں, روح ہے, اسی طرح کرسی ہے, قلم ہے, ساری یہ چیزوں کو اللہ رب العزت نے عالم امر کے حساب سے بنایا, کن کہہ کر ایک دم سے بنا دیا. تو اب اس چیز کو ملایا عالم خلق کے ساتھ, انسان کمبینیشن ہو گیا دو چیزوں کے ساتھ, تو اس کا پہلے جسم کو بنایا گیا پھر اس کے اندر روح کو ڈال دیا. ہاں البتہ جب پوچھا گیا کہ یہ روح کیا چیز ہے تو پھر بتا دیا گیا کہ وہ یس ارون کا آنے روح, کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یس ارون کا کس چیز کے بارے میں, روح کے بارے میں, روح کیا ہے خود آپ بتا دیجیے, الروح من امر ربی، یہ تو اللہ کا امر ہے، کمانڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے کمانڈ دی تم اور وقت دیتی ہو گئی. اس سے زیادہ نہیں بتایا گیا، اس سے زیادہ نہیں سمجھایا گیا. فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک محدود علم عطا فرمایا ہے. کیوں؟ کہ ہماری عقل بھی محدود ہے. اگر ہم خود اس محفل میں ہی دیکھیں، ہر آدمی کی سوچ کی ایک خاص لمٹ ہے، اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتا. اور اللہ رب العزت کی کائنات کو دیکھیں تو وہ انلمیٹڈ بنی گئی. سمائے اگر تم نکلنا چاہو تم اس کے حضور سے باہر نکل نہیں سکتے. تو جب نکل نہیں سکتے تو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو عالم خلق کی چیز ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. حتیٰ کہ انسان اپنے آپ کو پورا نہیں سمجھ سکتا. ہر روز ریسرچ ہو رہی ہے، ہر روز نئی چیزیں بن رہی ہیں، مستقل ایک کام ہو رہا ہے، نہیں سمجھ پاتا. جب اپنے آپ کو جتنا صحیح بھی اس کو نہیں سمجھ پاتا تو پھر ساری کائنات کو جس طرح سمجھے گا. اور اگر کائنات کو نہیں سمجھ سکتا جو عالم خلق کی چیز ہے، تو عالم امر کی چیز کو کیسے سمجھے گا؟ اس کے لیے تو پھر وہاں کی مشکل ہو جائے گا. وہ تو بنا ہی ڈفرینٹ اسٹائل سے ہے. اس ایک کمانڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا اور بنا دیا. بس اتنی بات سمجھ لیں کہ انسان کمبینیشن میں ہے اور یہ اس طریقے سے یہ دو چیزیں مل کے بن جائیں. اب جسے یوں سمجھے جیسے ایک مکان ہے اور اس کے اندر روح جو ہے وہ رہتی ہے، اور جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اکثر ہم نے دیکھا تو یہ نہیں کہتا کہ جی اسلم صاحب کو رہلا دیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جی میت کو رہلا دیں. اب اسلم صاحب چلے گئے، وہ جو روح تھی وہ اصل میں اسلم صاحب تھے، وہ تو اس کے اندر سے نکل کے چلے گئے. لہٰذا اپنے گھر والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میت کو لہرا دے، باڈی کو یہ کرے، باڈی کو وہ کرے. اب یہ صرف مانگی ہوتی ہے. اسلم صاحب جو اس کے اندر سے تھے یا جو بھی نام سمجھ رہے ہیں، ندیم تھا یا جو بھی تھا، وہ نکل کے چلا گیا. لہٰذا اللہ رب العزت وہی الفاظ زبان سے چلوا رہے ہوتے ہیں. اب اس کے نام سے نہیں پکارتے کہ جی فلاں صاحب کو لہرا دے، بلکہ یہ کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ اور اس کو قبر میں پہنچاؤ. انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا کی رنگینیوں میں آ کر کھو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس نے پھر آگے بھی جانا ہے. اصل میں جنت وطن اصیل ہے، یعنی وہ مستقل رہنے کی جگہ ہے جہاں مومن نے جا کے رہنا ہے. دنیا وطن اقامت ہے، یہ صرف ٹیمپرری ہاؤس ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، جنت کے مالک تھے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک وقت کے مقرر کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا. آدم علیہ السلام کے اندر جو اولاد نکلی، اللہ رب العزت نے کنڈیشن بنا دی کہ اگر تو اچھی اولاد بن کے رہو گے تو پھر تو ہم تمہیں آدم علیہ السلام کا وارث بنا دیں گے، ورنہ تم محروم ہو جاؤ گے. ایک ضابطہ بنا کے بتا دیا گیا. اور تم ہاں کہ اگر تم آدم علیہ السلام کی صحیح معنی میں اولاد بنو گے تو ہم تمہیں وراثت کا حصہ دیں گے. قرآن مجید میں وراثت کا لفظ استعمال ہوا کہ جنت کا وارث بنا دیں گے، اور جنت میں جانے کے بعد ساری نعمتیں مل جائیں گی. پھر اس کے بعد بھی جنتی کو جب یہ بتا دیا جائے گا کہ اللہ رب العزت تم سے راضی ہو گئے، اب تم یہاں سے کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے، تو پھر جا کے جنتی جو ہے اس کو دائمی خوشی ہو جائے گی. ہمیشہ کے لیے وہ خوش ہو جائے گا کہ الحمدللہ اب بات بن گئی. ورنہ تو پہلے آدمی رکھا ہم نکلے تو وہاں سے جنتی کو پھر ایک وام کا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا کب تک یہ مزے ہے، کیا حال ہوگا. لیکن جب اللہ اس بات کا اعلان فرما دیں گے کہ اب میں راضی ہو گیا اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے، الحمدللہ پھر یہ خوشی واقع بنانے کا وقت ہوگا. اب انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو دو چیزوں میں وہ جو ہے پھنستا ہے، کیونکہ انسان نے جو سچے بنایا گیا اللہ رب العزت نے جس انداز سے اس کو بنایا उसके अंदर एक उसका अंदर का दुश्मन है और एक उसका बाहर का दुश्मन है। अंदर का दुश्मन नफ्स है और बाहर का दुश्मन शैतान है। शैतान के बारे में फरमाया इन्ना कैदी शैतान का लाइफ, ये जो शैतान के कैद है यानी इसके जो ट्रिक्स है, हथकंडे है, ये क्या है? गरीब है, वीक है, इससे स्ट्रॉन्ग नहीं है। शैतान की जो वक्त होते हैं इससे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बल्कि अगर वक्तों को यूँ देखा जाए और नफ्स के बारे में कहा इन नकारीदा कुल आजीम, ये बहुत बड़े बड़े जो है ये हथकंडे हैं। अगर इंसान के दिल में तो वक्त का आता है और वो ये पहचानना चाहे कि ये वक्त साथ नफ्स का है या शैतान की तरफ से आ रहा है, तो एक समझने की बात है कि अगर वसवसा आकर दिल में जम गया और उसको से मजबूर कर दिया गुनाह कर, ये नफ्स का वसवसा। अगर तो वसवसा इस तरह से आता है कि जैसे दिल को से छुआ और दिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि चलो चलो, और लाखों रोना पड़ा उसने और बात खत्म, औजिदा पड़ी बात खत्म, मालूम हुआ कि शैतानी वसवसा था और उसको उसने जिस तरह रिजेक्ट किया वो फौरन हट गया। लेकिन शैतान जो है वो मायूस नहीं होता, वो तुरंत फिर दोबारा आता है। लिहाजा एक वसवसा दिल पर आएगा वो जाएगा तो दूसरा ट्रिक लेकर आएगा। शैतान इसी जगह अटैक करता रहता है, लेकिन फर्क यह है कि इंसान ने अपनी शहवत के साथ किसी नामहरम की तरफ देखा और उसकी मोहब्बत अब उसके दिल में घर कर गई और अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसके कदम उसकी तरफ उठने लगे, तो समझ जाए कि अब ये मेरा नक्श है कि मुझको बहता है। अब ये शैतान से बड़े बड़ा जो है ट्रिक है जो उसको फंसा रहा है। शैतान का इतना काम नहीं है कि वो उसको इस बात तक ले जाए कि वो जाके ये काम कर ले, बल्कि वो तो ये समझे कि जैसे एक बैरूनी दोस्त होता है, हालांकि होता दुश्मन है लेकिन दोस्ती की शक्ल में वो आइडिया देता है कि चलो चलो ये काम करते हैं। स्कूलों में कॉलेजेस में हम देखते हैं कैसे दोस्त होते हैं, इंसान को कोई ना कोई आइडिया दे देते हैं। आदमी की मर्जी है कि उस आइडिया को ले ले या उसको कहे कि भाई चलो भागो यहाँ से, तो ये शैतान बिल्कुल इसी तरह अटैक करता है। ये दुश्मन होता है लेकिन दोस्त बनकर आता है और इंसान को ऐसी बातें करता है कि वो इंसान उसकी बातों में आ जाता है। इसको ये समझे जैसे माचिस की तीली होती है, उसमें बारूद भरा होता है, थोड़ी सी उसको रगड़ देते हैं और आग भर गया रहती है उसमें से। इंसान का नफ्स इसी तरह बारूद की मादक उसके अंदर मौजूद होता है, शैतान आके उसको थोड़ा सा रगड़ता है और फिर वो फौरन जो है आग की शक्ल में बाहर आ जाता है वो बारूद। यहाँ पे इंसान फिर उस काम को कर गुजरता है जो उसको नहीं करना चाहिए। अब मोमेंट के इरादे क्या होना चाहिए कि वो अपने इस लक्ष्य को खवाए, क्यों अगर लक्ष्य खवर जाएगा तो साफ जाहिर है कि अब वो शैतान के हथकंडों में ही आएगा और असल दुश्मन तो हमारा लक्ष्य ही है। शैतान तो आकर बाहर के जा करेगा, लिहाजा हमें लक्ष्य को खवारना पड़ेगा। अब ये लक्ष्य चाहता है कि बस मैं इंजॉय करता रहूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। अगर इसको आप समझाएंगे नहीं तो इसका हाल ऐसे होगा जैसे आप देखे ना एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसको दूध पीने की आदत हो जाए, बचपन में उसको दूध पिलाया जाता है, अब उसे पाया जाता है तो वो रोता है, उसको पीने चाहिए, उसके लिए अपना वो जो पीपल है वो चाहिए, वो नहीं मांगेगा। आप उसको खिलाए रोटी वो कहेगा नहीं दूध चाहिए। लेकिन अब इसके पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि आप कुछ देर उसकी बात नहीं माने, और उसको भूख लगेगी, खुद ब खुद वो फिर रोटी खाना शुरू कर देगा। जिस तरह बच्चे को ट्रेन किया जाता है, इसी तरह नक्स को ट्रेन किया जाता है। नक्स इसी तरह बात बात से अड़ जाता है, जो चीज उससे चाहिए होती है वो उसको मांगता है, बस आज थोड़ी सी देर के लिए उसको रोक दे और कहे कि ये तुम्हें नहीं मिलेगा। जब आप उसको रोकेंगे तो खुद ब खुद वो फिर उसका आदि हो जाएगा और कम्प्रोमाइज कर लेगा। नफ्स जो है वो लज्जतों का आदि हो जाता है, और इसको काबू करना या इस नफ्स को मारना मतलब क्या है कि इसको शरीयत के रास्ते के ऊपर चलाना, ये है असल बात। और यही सबसे बड़ी सलामत है कि इंसान ऐसी जिंदगी गुजारे कि सारी जिंदगी को अगर देखा जाए तो वो शरीयत के ताबे। आज लोग कहते हैं कि हवाओं में उड़ के दिखाएं, पानी पर चल के दिखाएं तो दिल बड़े पीर साहब होंगे, बड़े लोग बुजुर्ग होंगे, ये तो बुजुर्गी की बात नहीं है। ऐसे मुजाहिदे लोग कर लेते हैं, ऐसे योगी होते हैं, और खासतौर पे हिंदू मजहब में ये बाल ऐसे जो हिप्नोटाइज वगैरह करने वाले लोग होते हैं वो इस किस्म की मशक करते हैं और उनको ये तकलीफ आ जाती है, उसके बाद वो उनके सीधे काम करके लोगों को दिखाते हैं और ये बताते हैं कि जहाँ हम बड़े कोई सुपरस्टिशियस किस्म के लोग हैं। हालांकि इसकी कोई अहमियत नहीं है, असल अहमियत ये है कि इंसान शरीयत के ऊपर कारबंद हो जाए और उसका मिजाज शरीयत वाला बन जाए तो फिर बात बनती है। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बनी आदम को कहते हैं कि तुम शैतान की बात को मत मानो, वो तो खुदा तुम्हारा दुश्मन है, बल्कि तुम जो है अल्लाह की इबादत करो और यही सीधा रास्ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नफ्स को कैसे काबू करें, एक तरह से शरीयत के ऊपर चलाए, और इसी बात के को समझाने के लिए बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिजाबुल्लाह को भेजा। ये हिजाबुल्लाह क्या होते हैं, एक समझे जैसे किताबुल्लाह, किसी यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजी जो किताब कुरान मजीद। अब ये किताबुल्लाह अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देते और वो काबतुल्लाह के ऊपर आकर उसको इस तरीके से फिक्स कर देते कि कोई उससे हटा न सकता, और सारी दुनिया को बता दिया जाता कि भाई सारे मसले मसायल इसमें लिखे हुए हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की भेजी हुई किताब है और तुम्हें इसके मुताबिक अमल करना है। इन्हें अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन किताबों के साथ इंसानों को भेजा, रिजाद भेजे, इंसान भेजे, ऐसे मर्दों को अल्लाह ताला ने भेजा जो अल्लाह वाले थे यानी अंबियाए कराम थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये एक सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबियाए कराम का इस दुनिया में भेजा, और उन्होंने आकर इस बात को खोला कि ऐ इंसानों अगर तुम इस तरह की जिंदगी को गुजारोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये समझे कि जैसे इस जिस्म के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, जो जिस्म की बनावट को समझते हैं, इसकी बीमारियों को समझते हैं और उनका इलाज बताते हैं, इसी तरह जो रूह होती है, जो इंसान के अंदर पोशीदा चीज है, उसकी बीमारियां और उसकी जो रूहानियत हासिल करने के तरीके हैं और उसके जरिए से नफ्स को काबू करने का जो पूरा सिस्टम है, उसके स्पेशलिस्ट अंबियाए कराम होते हैं। अंबियाए कराम को ये भेजा, फिर उसके बाद जब अंबियाए कराम का सिलसिला खत्म हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इस इस्लामी काम को इस उम्मत के हर बंदे के लिए ओपन कर दिया। यही ये समझे कि हर बंदे के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलायत का जज्बा रख दिया, यही ये समझे कि उसका बीज वलायत का हर कल्ब के अंदर मौजूद है, जो बंदा पानी देगा पानी جو اس میں محنت کرے گا یہ ولایت کا پھر جو دین ہے یہ گرو کرے گا اور یہ تناظر دس بن جائے گا. تو کمالات ولایت اللہ رب العزت کے ہر بندے کے اندر رکھنی ہے. فقط انتہا ہے کچھ لوگ محنت کرتے ہیں اور کچھ لوگ محنت نہیں کرتے. اب ایک امت کے لیے بڑی بننا ہر ایک کے لیے ممکن ہے. انسان خواہش کرے, اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے اور پھر اس سوچ کو ڈھونڈے کہ جہاں سے وہ اس تربیت کو حاصل کر سکتا ہے اور اس ولایت کے نور کو اپنے دل میں سما سکتا ہے. چنانچہ انبیاء کرام نے اپنی زندگی گزار کے دکھا دیا کہ اگر تم یوں کرو گے تو تم اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لو گے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نسی جیسے بھی بنی آدم مدغتن یعنی انسان ان نسی جیسے بھی انسان کے جسد میں اس کے جسم میں بنی آدم کے جسد میں ایک لوچڑا ہے گوشت کا یعنی کہا جاتا ہے ایزا سر خرچ اگر وہ ٹھیک ہو جائے سمر جائے سر خرچ کہ سارا کے سارا اس کا جسم سے ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایزا پسند اگر وہ خراب ہو جائے پسند جیسا جو کل سارا کے سارا جسم اس کا خراب ہو جائے گا. ادا وحی اور یہ کیا چیز ہے یہ پھل ہے. انسان کا جب دل سمجھ جائے تو خود بخود اس کے جسم سے نکلنے والے سارے کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں. جسم کے سمجھنا کیا ہے کہ انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اگر وہ اس میں وہ مقتدائی سنت ہو جائیں وہ سمجھ گئے. ایک بہت پیاری مثال سے انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ جب اگر کسی دلہن کو تیار کیا جائے دلہے کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جاتی ہے, انگلیوں میں انگوٹھا پہنائی جاتی ہے, بازو میں سمن سجائے جاتے ہیں. اب ہر ہر ان کو مختلف انداز سے ڈیکوریشن کی جا رہی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب دلہا آ کے دیکھے گا اس کو یہ دلہن اچھی لگے گی. اب دلہن کو اسی تیار کیا جا رہا ہوتا ہے, کانوں میں دندے پہنائے جاتے ہیں, اسی طریقے سے سارے جسم اس کا اس طریقے سے سجایا جاتا ہے. مومن اسی طرح اپنے ہر ہر عضو کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ سجاتا ہے اور ایسا مومن چل جاتا ہے بھر جاتا ہے اور پھر قبر میں جب اس کو پہنچایا جاتا ہے تو اب کہا جاتا ہے کہ دلہن کی مانت تو سو جائے. کیوں؟ ایک نقطہ اس میں سمجھے کہ جب دلہن سو جاتی ہے تو اس کو پھر دلہا آ کے جگاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اب اس کو کوئی اور ڈسٹرب نہیں کر سکتا, سب گھر والے چلے جاتے ہیں اور دلہن جو ہے اس وقت صرف دلہے کے انتظار میں ہوتی ہے. اسی طرح وہ مومن جو بد صبر کے اس دنیا سے جاتا ہے اس کا پروردگار جو اس کو اس قبر سے جگاتا ہے. تو اب اگر مومن اپنے اس دل پر محنت کرے گا تو اس کا دل سنورے گا اور اس کی وجہ سے تمام اعمال جو ہے اس کے ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہ نفس جو ہے اور ادھر سے دل, ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے. دل جو ہے یہ جب سنورتا ہے اس میں اللہ حضرت عزت کی محبت آتی ہے تو یہ نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور نفس کو شریعت کے تابع کرتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈو وٹ یو فیل لائک یو ڈو, जो उनका दिल वो कहता है वो लोग करते चलेगा। अब ये एक बड़ा अजीब बात है कि अगर दिल सही कहने लग जाए तो खुद वो खुद वो आदमी फील लाइक डू करते। तो अब इसमें एक क्वेश्चन है, सूर्य काम के अंदर एक दौर था जिसमें नक्स के मुजाहिदे करवाए जाते थे और उसमें बड़े बड़े मुजाहिदे होते थे। लोग अपने गले में ऐसी लकड़ी की रोटी बना के लटका देते थे और उसको चबाते थे और नक्स को कहते थे कि तुझे रोटी नहीं लगी, तुम बस इस लकड़ी को चबाओ, और उससे वो अपनी भूख को मिटाते थे। और इसी वजह से उनका नक्स जो है वो समझता है। आपने कई दफा किताबों में बुजुर्गों की बातें पढ़ी होंगी, वहां भी सोचता है कि ये वो कैसी कैसी मेहनतें करते थे जो आज हमारे दौर में लहर कोई करता नजर नहीं आता। तो वो एक दौर था जब मुजाहिदों का जमाना कहा जा सकता था, और उसकी वजह ये थी कि वो नक्श के जरिए से दिल को छवाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बजाय अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें भेजे कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से आज के दौर के मुताबिक सलूक को मांग लिया, नहीं ये मांग रहा कि अल्लाह इस दौर में जब इंसान की मार्फत को हासिल करना चाहेंगे तो फिर हमारे लिए कोई तो आसान तरीका बता दे जो आज के लिए हमारे लिए मुमकिन, क्योंकि अगर आज हमें वो उस अंदाज से तरबियत की जाए, यानी ये समझे कि वक्त होता था कि मशाए हर एक की बैठ नहीं ले जा सकते थे, लोगों के पास जाते थे क्योंकि बैठ कर रहे, वो कहते थे कि आप से जाके सोचे हम भी सोचेंगे आपके बारे में। हर हमला के बारे में कहा जाता है कि वो एक इलाके के गवर्नर थे, उन्होंने फैसला किया, लंबी स्टोरी है मैं इसको शॉर्ट करके सुनाता हूँ कि भाई अब जो है कुछ प्रमुख के बारे में सीखा जाए, तो गवर्नर ही उन्होंने छोड़ दी अल्लाह अल्लाह करने के लिए, सीखने के लिए निकले। अपने शहर के पास पहुंचे और बनाया कि तुम ऐसे करो जाओ जाकर एक चीज होती है जंगल, पता नहीं तुम इसमें क्या बोलते हैं सल्फर, वो बहुत ही बैड स्मेल होती है, तो कहा के तुम ऐसे करो इसके जाकर दुकान खोलो और अगले साल आना मेरे पास। अपनी मेहनत में नहीं बिठाया बल्कि कहा के अगले साल आना। अब आप ये बताएं कि एक आदमी वक्त का गवर्नर था और वो अब जाके दुकान खोल के बैठा हुआ है और लोगों को ऐसी चीज बेच रहा है और सारा दिन उसकी स्मेल खुद फील कर रहा है, कितनी मुश्किल से उसने एक साल गुजारा होगा। तो साल जैसे ही गुजरा वो अपने शेफ के पास आए और कहने लगे अगर साल हो गया है आपने मुझे भेजा था, तो कहने लगे अच्छा तुम इसका मतलब साल की गिनती कर रहे हो, जाओ एक साल और करो। अब एक साल और लगाया मैंने, एक साल और लगाने के बाद जो वापस तकी लाए बताया अच्छा वो फिर तकी लाए तो हजरत ने खुद पूछा कि कितना साल हो गया, तो कहने लगे कि साल हो गया है एक और। भगवान ने कहा बैठे करो इस दुकान को बंद कर दो और आप ये प्याला लो और जाओ और जाके लोगों से भीख मांगो। एक वक्त का गवर्नर था, दो साल उसने सल्फर बेची और उसके बाद दो साल के लिए खैरात मांगने के लिए उन्होंने उसको भेज दिया। अल्लाह की शान कि जब ये खैरात मांगने के लिए जाते थे तो ان کو کوئی خراب بھی نہیں لیتا تھا. یہ لوگوں سے مانگتے تھے اور لوگ ان کو کہتے تھے ہٹے کٹے ہو تم اور خراب مانگتے ہو کہہ دیا. جس طرح انہوں نے خراب مانگی اللہ رب العزت کا عجیب نظام تھا کہ ایک آدمی نے بھی ان کو خراب دیا. اللہ کتنے رنجور ہے اب اللہ ہمارا خیال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیج تو منگوائی لیکن خراب نہیں. پھر جب یہ واپس آئے تو اب شیخ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے. اگر کوئی آدمی سے سال محنت کر کے آیا ہو اور شیخ پوچھے کہ جی آپ کا نام کیا ہے تو میرے ساتھ کہیں گے بڑا پیر ہے بھائی کمال ہے اس کو میرا نام ہی نہیں پتا اور میں دھکے کھاتا پھرتا ہوں اس کے چکر میں دونوں ایسے پیر کو چلو یہاں سے. تو پھر کہا جی میرا نام خدمی ہے میں سکتے کیا ہو چل لگے کہ میں تو گورنر تھا ہلا علاقے کا چھوڑ کر آیا تھا کہ اللہ اللہ سیکھوں گا. تو کہنے لگے پھر تو تم نے بڑے لوگوں کے حق مارے ہوں گے. چل لگے جی ہو گورنر ہی میں تو سب کچھ ہوتا ہے تو اچھا آپ ایسے کرو جس بناؤ کے کس کس کے حق مارے ہیں تاکہ تم ان سے جا کے معافی مانگو. ہم مجھے تو یاد ہی نہیں ہے تم میں تو تم جس بنانا شروع کرو یاد آ جائے. انہوں نے لسٹ بنانی شروع کی پتا چلا کہ لمبی ساری لسٹ بنی تو فلاں کا یہ دینا تھا فلاں کا یہ کرنا تھا فلاں کا جا کے اس سے معافی مانگتا. اب یہ وہاں سے چلے اس علاقے میں آئے جہاں گورنر ہی کرتے تھے. وہی اپنے علاقے تک پہنچ کے تو وہاں نوجوان لڑکے کھڑے تھے انہوں نے دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان گئے. کہنے لگے یہ تو وہی پاگل ہے جو کہتا ہے کہ اگر اللہ والا بننا ہے گورنر چھوڑ کر چلا گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور یہ جناب فقیر بن کے خرائد مانگتا رہا وہ اس کو دھکے دیتے تھے کوئی پیسے نہیں ملتا تھا اور وہ ایسے کام مچل جائے. اب وہ آئے اور کسی نے لاگ کھینچا کسی نے عزت کھینچا اور کہا کہ بھی یہ پاگل ہے. اب اس کے ساتھ مذاق رکھتے ہوئے اور یہ اپنے علاقے میں کام کرے آپ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی میں نے تمہارا حق مارا تھا اب یہ رسک لے سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ پاگل ہے تو کہتے جاؤ تو دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا. وہ پاگل سمجھ کے اس کو ٹریٹ کرتے رہے اور یہ ایک ایک سے جا کے انہوں نے معافی مانگتے رہے. کسی نے کہا میری دعا ٹوٹ گئی یہ کرو اس کو بناؤ. کسی نے کہا سلا میرا کام کرو. کسی نے کہا یہ کرو. کسی نے کہا چلو چلو بھاگو یار. تو اس طریقے سے محنت ماجد کرتے کرتے انہوں نے وہاں کئی سال لگائے اور سب سے معافی مانگ کر اپنے شیخ کے پاس تشریف لائے. اب شیخ نے کہا کہ آج کے بعد آپ ہماری محفل میں بیٹھنے کے قابل ہیں. اللہ بس ہم اٹھتے ہیں اور جناب اکٹھے کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. حضرت ہم بڑے جناب آ گئے ہیں آپ کی دفتر میں بیٹھنے کے لیے. ہمیں کھانا بھی چاہیے ہمیں یہاں بیڈ بھی چاہیے آپ کے پاس بھی رہنا ہے چائے بھی چاہیے اپنی باتیں بھی کرنی ہے اور آپ کو بک کر بھی کرنا ہے. نہ ادب آتا ہے اور نہ کچھ پتا ہے نہ بھی اختلاف پیدا ہوا. تو میرے بھائی ایک وہ دور جب لوگ اس طریقے سے مظاہرے کرتے تھے کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں اور اب سوچتے ہیں کہ وہ شخص کہاں چلے گا. آج جنید بغدادی ہے اور میں چلی جیسے ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرما دیا کہ ہمارے بچہ نے ہمارے مقابلے جو ہے دیگر اخبار کی محنت کو اللہ حبیب سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے کسی طور پر ان کو یہ بات دلوں میں ڈال دی اور انہوں نے ترتیب کو بدل دیا. کیا ترتیب بدلی کہ وہ جو مجاہدے کروائے جاتے تھے के लक्ष्य गुजर गए होते थे। खाने दस्तरखान से लगा दिया जाता था, पानी का गिलास लेता था, मरीज के खाने के अंदर पानी डाल देता था, खुद बैठ के उसके सामने चल रहा था ताकि उसके लक्ष्य। खुद दस्तर खान पे बैठता था, मरीज को कहता था उधर जूते में जाके बैठो और ये रोटी के ऊपर रोटियाँ या जो थोड़ा बहुत खादन बैठे। आज हम आपके लोग लिहाजा आज मैंने कौन सी दवाई रखी है, आज इस हदीस मुबारक के मुताबिक कि अगर दिल संवर जाए तो नस संवर जाएगा, यानी अब तरतीब जो बदल दी गई। पहले नस के ऊपर मेहनत करवाते थे, दिल संवरता था, आज दिल पे मेहनत करवाते हैं, नस संवर जाता है। जो समझे कि दो एंड है और जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, अगर यहाँ पानी डालेंगे तो इधर पहुँच जाएगा, इधर पानी डालेंगे तो इधर पहुँच जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों अंदाज से मेहनत करवाई। पहले वाले लोग क्योंकि उनकी तबीयतें उनके मकामात माशाल्लाह खूब होते थे, वो मेहनतें उस तरह की कर गए। सत्र आगे रख बन गया, इसकी तरतीब जो है वो कड़वी मेहनत से करवाई जाती है। बाकी सलासल के जो अखबार होते हैं उनमें लक्ष्य के वजह से करने करवाए जाते हैं। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत है हमें ये नेमत अता फरमा दी। लेकिन बहरहाल हमारे तो लक्ष्य है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा कि अल्लाह मैं आप तक आना चाहता हूँ, यही आपकी वास्तव को हासिल करना चाहता हूँ, किसी का हासिल करूँ तो मैं जाऊ नाला कि तुम अपने नफ्स को छोड़ दो और तुम मुझ तक पहुँच जाओगे। अल्लाह भाई सारे रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला का आपका सिर्फ दो कदम है, पहला कदम तुम नफ्स को रख दो और दूसरा कदम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से वाकिल हो जाओगे, अल्लाह ताला से तक पहुँच जाओगे। अब इंसान का क्योंकि जिस्म जो है वो ये समझे कि इंसान एक रियासत की मानद है, क्योंकि आवाज तो जिस्म से निकलने हैं। अब इस जिस्म के अंदर नफ भी है और रूह भी है, ये यूँ समझे दो पार्टियां हैं और वो इस जिस्म के ऊपर बात करना चाहती हैं, इसको रूल करना चाहती हैं, इससे अपने मुताबिक काम लेना चाहती हैं। नफ्स चाहता है तरकशी वाली बातें कि हर बुरा काम वो इस जिस्म से लेना चाहता है और बड़ा मजा आता है। कानों के अंदर मोसीकी, आंखों से नामहरम के नजारे, हाथों से बुरी चीजों को छूना, कदम से बुरे रास्तों पे चलना, सड़कों पर आप देखते ही होंगे, ये सारे ये क्या है, नफ्स की मकामियां हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रूह डाली, रूह एक लतीफ चीज है और रूह की जो मिजाज है वो पकीसा है, क्योंकि ये आलम अरवाह की चीज है और आलम अरवाह में हर चीज पाकीज़ा है। वहाँ फरिश्तों का माहौल है, लिहाजा ये रूह जो है ये भी पाकीज़गी के तरफ मायल होती है। अगर रूह को ताकत मिल जाए और रूह स्ट्रांग हो जाएगी तो ये जिस्म को अपने तबीयत के मुताबिक चलाएगी, क्योंकि इसके अंदर पाकीज़गी है। इसलिए हमारा कि हर बच्चा जो है वो दीन इस्लाम की फिक्र से पैदा होता है, किसी को शुरू उसकी खराबी नहीं होती। हाँ अलबत् उसके अंदर नफ्स जरूर होता है, हर बच्चे का जी चाहता है कि जब वो काम करो जो मुझे पसंद है। अगर उसको कैंडी खाने को जी चाह रहा है तो बच्चा बेकरार हो जाएगा, आप उसको काबू नहीं कर सकेंगे। मतलब उसको जब तक देंगे नहीं वो रोता रहेगा, परेशान कर देगा। यानी दूसरे लम्बों में बच्चा जो है वो बिल्कुल जानवर की तरह होता है, तो उसके अंदर ना सर्कश होता है, लेकिन चूंकि उसकी रूह पकीदा होती है इसलिए वो जीने की तरफ सांप के ऊपर भी होता है। लिहाजा अब क्या होता है कि इंसान अगर रूह को ताकत देगा तो रूह स्ट्रांग हो जाएगी और नफ्स को वो काबू कर देगी, और अगर रूह को ताकत नहीं मिलेगा तो नफ्स कर्कश जो है वो रूह को काबू कर लेगा और जिस्म के ऊपर आज करने देगा। तो अब पता चला कि हमें अपनी रूह को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब रूह के बारे में कुछ बातें समझें। इंसान के जिस्म के अंदर ये रूह जो है खास तौर पर 5 पैर के ऊपर मौजूद है। मौत का प्रश्न जब आता है तो हमारा जो मतलब अंजा जो है इंसान के छाती में डालता है और वहां से रूह को खींचता है। मालूम होता है जो कि कच्ची तौर पर शायद को पता चला कि 5 पॉइंट ऐसे हैं जो इंसान की छाती में ऐसे हैं कि जहाँ पर रूह खास तौर पर है और पूरे जिस्म के अंदर आम तौर पर है। यानी अगर ये जैसे इस कमरे के अंदर अगर हम कहें कि रोशनी आम मौजूद है लेकिन खास तौर पर कुछ पॉइंट है वहाँ पर मौजूद है। आपने ये भी देखा होगा कि ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ये ईसीजी करते हैं और इलेक्ट्रोड खास तौर पर कुछ पॉइंट के ऊपर लगाते हैं और उसके बाद आम तौर पर ये टांगों में और यहाँ हाथ से भी इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और ये कहते हैं कि दिल के अंदर की जो हरकत है जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से वेव निकलती है वो इन पॉइंट के ऊपर तो खास है और बाकी जिसम के अंदर भी ये सारी की सारी फाइल आती है, लिहाजा वो वहाँ से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि दिल के अंदर फला मुक्त पाया जाता है। अनेक बीमारियों को भी दिलों की का ये रूहानी बात कर इस बात से कारण कि यहाँ पर ये दिल जो हमारे जिस्म में जोश का लोटा जो रखता है बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर एक रूहानी फल होता है जिसका जिक्र कुरान मजीद ने मुख्य लोगों के कल्ब की सूरत में किया गया, कहा गया कि कल्ब यहाँ है। अच्छा, अब अगर किसी सूफी साहब का कल्ब देखा जाए जोर से नहीं होगा पान के साथ होगा जो बोल कर कल्ब है हो सकता है कि वो इंफेक्टेड हो उसके अंदर बीमारी हो इफेक्टेड हो सकता है लेकिन रूहानी कल्ब उसका स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद में अगर मुझे एक ऐसे फांसे फाजे का कल्ब देखा जाए हो सकता है कि ये कल्ब जो भटने वाला है जो ब्लड को पंप करता है वो तो उसका बहुत अच्छा होगा लेकिन रूहानी कल्ब उसका खराब हो चुका होगा। लिहाजा कुरान मजीद ने जहाँ बार बार कल्ब शरीर का जिक्र किया गया तो असल में रूहानी कल्ब की बात की जाती है, वहाँ पर इस दिल की बात नहीं की जाती है। इस कल्ब के बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम दाएं तरफ देखें तो यहाँ एक और पॉइंट है, इसका नाम रूह है। अब ये रूह इसका नाम है, एक तो रूह ये सारे रूह के पॉइंट बताए जा रहे हैं। मारे हम बात करें कि पाकिस्तान में जब गया तो एक आदमी का नाम था मुसलमान, अल्लाह के साथ उसको बुलाते थे मुसलमान, वो कहते हैं जी बाकी लोग कहते थे हम कौन है भाई तो मुसलमान है हम भी क्या देखते हैं फिर हम अमूमी तौर पर मुसलमान है तो वो खास तौर पर मुसलमान था उसके नाम मुसलमान था। तो अब ये पॉइंट जो है इसका नाम रूह है लेकिन असल में ये सिर्फ एक पॉइंट का नाम रूह है लेकिन रूह बाकी भी सारे रूह है इसका नाम भी रूह रखती है। जैसे ये बात समझाने के लिए मिसाल दी गई फिर इसी तरह इस अर्ध से थोड़ा सा ऊपर और सीने के अंदर की तरफ यानी तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट है जिसको सिर कहा जाता है, सामने बल्कि सिर। और फिर इसके दिन मुकाबल दाएं तरफ ये खफी और दरमियान में अफ्फा कहा जाता है। अच्छा, ये जितने भी नाम रखे गए यानी कि कल्ब, रूह, सिर, खफी, अफ्फा, ये मशाइख ने रखे, लेकिन कुरान और हदीस के अल्फाज दिए ये जिस तरीके से बाकी उलूम को तरतीब दिया गया, इसी तरह ये उलूम भी इसी तरह तरतीब दिए। अब लक्ष्य का जो पॉइंट है इसमें सलाब था, कुछ लोगों ने कहा कि ये यहाँ पर है और कुछ ने कहा कि ये बेली बटन से नीचे इसका पॉइंट है। हजरत इमाम रब्बानी ने फरमाया कि इसका पॉइंट यहाँ पर है यानी दरमियान ये पेशानी के ऊपर, और इसका फैलाव जो है वो जेरेना है। अब बात समझ में आ गई, उन्होंने इसको कनेक्ट करके बता दिया। फिर इंसान का जो जिस्म है ये बना हुआ है हवा, मिट्टी, पानी, आग, इनकी कॉम्बिनेशन जो है उसका भी एक पॉइंट है और वो इंसान के बिल्कुल सर के ऊपर दरमियान में यहाँ पर करके रखा हुआ है, इसको कालत कहते हैं। अब हमें ये समझ में आ गई कि पांच पॉइंट जो है वो तो हो गए रूप के आलम अमर से, और ये दो पॉइंट जो है आलम खल्क के। असल में अगर ऊपर कालत को देखा जाए तो ये भी हवा, मिट्टी, पानी, आग से बना हुआ है, कि चार ये हो गए, एक नक्श हो गया, पांच ये हो गए, पांच यहाँ हो गए, और हर पॉइंट आलम खल्क के किसी न किसी से कनेक्टेड है। मतलब दिल नक्श के साथ हमने बताया कनेक्टेड है, इसी तरह रूह जो है वो हवा से कनेक्टेड है, फिर पानी से कनेक्टेड है, और जो है खफी वो आग से और अफ्फा मिट्टी से कनेक्टेड है, इनके आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, ये बातें तो सारी हमारे मशायख ने कशु तौर पर बताई, लेकिन आपको एक मजे की बात भी बता दी जाए कि इंसान, क्योंकि हम तो आलम खल्क इस बातें से, चलो हम डॉक्टर लोग हैं तो सब बता ही सकते हैं कि इंसान में भी ये फोर हेड है, माथा, इसके जो पीछे इंसान का जो ब्रेन है उसके अंदर फ्रंटल लोब होता है, और अगर फ्रंटल लोब की फंक्शन को देखा जाए तो वो सारा का सारा नक्स का है, और शार्ट फ्रंटल लोब के अंदर होती है, डिजायर सारी की सारी फ्रंटल लोब की जात है। और अगर आप कालम को देखें जो हमने कहा कि ये पॉइंट है, इसके बिल्कुल नीचे सेंट्रल लोब पड़ा हुआ, अब सेंट्रल लोब को अगर आप देखें तो वो यू करके यहाँ से यू बना हुआ है पूरा का पूरा, और इसके अंदर पूरा इंसान है, यानी अगर आप उसके अंगूठे को हिलाएंगे तो मैसेज सेंट्रल लोब पे पहुंच जाएगा, सारा का सारा इंसान यहाँ पर अल्लाह ताला ने रखा हुआ। आलम खल्क की बात तो इस तरीके से बढ़िया बात भी समझ में आ गई, और जब ये बात समझ में आ जाती है तो भाई आलम अमर को हम खुद समझ रहे हैं, ये भी एक चीज है, ये एक दलील है कि जब ये बात हमें आज साइंस बता देती है, और हमें कितने सौ साल पहले मशायख ने कशु तौर पर बताया कि ये चीज यहाँ पर है, तो वो बात भी आज हमें फिर मानना आसान हो जाती है, तो उनके कष्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके कष्ट है, वैसे भी आजकल की बातें उन्होंने की थी, आज साइंस बता रही है इन बातों को, उन्होंने कच्ची तौर पर इन चीजों को बता दिया, तो अब ये बात सारी समझ में आ गई। अब क्या होता है कि मशायख इन पॉइंट के ऊपर जिक्र बात कर रहा है, अब जब जिक्र अजगार किया जाता है, अच्छा इनको हम लताइक भी कहते हैं, लताइक क्यों कहा जाता है कि लताइक जो है जमा है लतीफे की, लतीफा कहते हैं बड़ी कोई जो साफ चीज हो उसको लतीफा कहा जाता है, या आमतौर पर उर्दू में भी ये अल्फाज बोले जाते हैं लतीफा का, और इंग्लिश में जो जोक कहते हैं, और जो भी होता जाए तो वो बात ऐसे ट्रिक से की जाती है और उसके अंदर एक खास पॉइंट ऐसा बड़ा बारीका होता है जो इंसान को हंसा देता है। अगर इंसान हंसता है तो लाइफ ठीक जाता है, इसलिए उसको लतीफा कहा जाता है, इसलिए लतीफे कहा है। और असल में लतीफा ये रूह जो है वो इतनी बारीक चीज है कि नजर नहीं आती, इसलिए उसको यहाँ पर नतायक की शक्ल में बता दिया कि ये नतायक है, यानी ये लतीफा कम है। अब जब इंसान बैठ सकता है तो उसको पहले सबक दिया जाता है लतीफा का, उसको अब वो बैठ जाता है और वो ये सफर करता है कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल शिक्षा में कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब ये क्या है, ये गुमान है। और नबी को फरमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे के साथ जो मामला करते हैं वैसा वो गुमान कर लेता है। अब ये तो अल्लाह ताला के साथ गुमान करके बैठ जाता है कि अल्लाह मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, और जो दिल कह रहा है वो उसको रूह का ये जो लताए अभी बताए थे इनमें से अब पहले सफर बताया जाता है लतीफा कालूगा। अब वो इससे जब गुमान करके बैठ जाता है कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कहता है, इसी तरह गुजरने के बाद ये बच्चे को इदराक होने लग जाता है। और ये इदराक क्या होता है, आपने देखा होगा कि बाल बाल इंसान घर में बैठा होता है और घर में से बेरुखी आइडिया कहती है कि मेरा ख्याल है कि घर की बेटी है, वो कहते हैं अब वो कहते हैं विचार से चेक करो, जब चेक करते हैं तो बाहर को बंदा खड़ा होता है। तो अब ये इदराक बीवी को तो हो गया, इसको नहीं हुआ। इसकी और मिसाल समझे, आजकल के साइंटिफिक दौर है उसको बात समझना भी आसान, उससे हमारे सेल फोन होते हैं। अब अगर एक आदमी किसी सेल फोन के नंबर को डायल करता है, हम यहाँ सारे बैठे हैं हमारे सबसे बात करते हैं, अगर वो बंदा मेरे सेल फोन के नंबर डायल करेगा तो मेरे सेल फोन को तो मैसेज आ जाएगा, काफी वो कहेंगे कि भाई हमारे पास भी टेलीफोन है, आपका टेलीफोन बज रहा है, आप कहते हैं हमारा टेलीफोन भी नहीं बजता। दुनिया कहेगा कि इसलिए कि मैसेज मेरे टेलीफोन पर आया, मेरा टेलीफोन सैटेलाइट से कनेक्टेड है, इसलिए मेरे टेलीफोन भी बिल्कुल इसी तरह वो बंदा जो दूसरे कार से लेने करता है उसका दिल कनेक्टेड हो जाता है। अब इसको मैसेज भी जाने शुरू हो जाता है, दस महीने में साथ बैठे होते हैं उनको मैसेज हुआ ये जरूर समझिए। और मिसाल से इस बात को वादे करते हैं, हमारे लिए लोगों के पास रेडियो होते थे और रेडियो पे ही खबरें सुन जाती थी, लिहाजा बात होती थी और वहाँ कम होती थी और बीबीसी से खबरें आया करती थी। और जो बुरे लोग होते थे ना, इनको पता होता था कि ये रेडियो पे जरा फ्रीक्वेंसी से मैच करनी है बीबीसी के, ये कुछ लोगों को पता होता था और अक्सर लोगों को नहीं पता था, लिहाजा आप उसको रेडियो देते थे कि भाई जरा बीबीसी लगा रहे, वो तो फटाफट घुमाता था बात वो और बीबीसी लगा रहे, और जो ही वो उस पॉइंट को पहुंचाते थे बीबीसी के कनेक्शन जुड़ता था और भाई साहब बीबीसी जरा शुरू करता था। भाई साहब हमारे का एक पॉइंट मकरमा का पॉइंट मकान करना था, तो ये समझे ये मुख्य पॉइंट है। अब कोई चीज उसके ऊपर वो फिट करते मुझे उसके फिट की बात की आवाज आनी चाहिए और ये मजा मेहनत नहीं करता नहीं करता और अगर ये अपनी को नहीं करता अब दूसरा बड़ी वो उसको आप समझाते रहे तो भाई ये होता है वो होता है वो कहेगा की फसल आप हमारी तरह से आप समझाते नहीं, बता कहता है कि आप उतरते जब आप मेहनत करेंगे तो फिर आपको ये आवाजें सुनाई देने लगेंगी। अब देखो हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने आवाजें सुनी, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इस रूहानी कल्ब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पॉइंट हमारे अंदर डाले हो, क्योंकि ईमान का निरीक्षण है आलम कल्ब अमर का, तो इसके अंदर रूहानियत जो हमारे करने की सलाहियत है वो बात से मिल सकती है कि अगर वो जिक्र मुराकबे करे और जिक्र मुराकबे कितने करने। अब अगर आप इस कंट्रोल को चार्जर के साथ थोड़ी सी देर के लिए लगाएंगे तो ये चार्ज मिलेगा? हम कहेंगे कि नहीं, इसको एक टाइम तक इसको चार्ज करना पड़ेगा। आप अगर जब तक वो टाइम उसको नहीं देंगे ये चार्ज नहीं होगा। मुर्गी अगर अंडों पर कुछ दिन नहीं बैठेगी तो वो उसमें से बच्चे जिंदा चू चू करते हुए नहीं निकलेंगे। मुर्गी को बैठना पड़ेगा उन अंडों के ऊपर। हर नतीजे का एक मिकदार है वक्त की। अगर उतना वक्त एक आदमी जिक्र अज़कार की मेहनत करेगा इसका वो नतीजा जारी हो जाएगा। अब ये जारी होना किसे कहते हैं भाई? जारी होना यूँ समझे कि एक खास किस्म की वाइब्रेशन की इंसान को फील होने लगती है। इसकी मिसाल यूँ समझे कि जैसे हमारे यहाँ बसेज होती है, तो बस के अंदर अगर बस खड़ी हुई हो तो आदमी जी को बैठा हो एक खास किस्म की हरकत की महसूस हो रही होती है। एक आम दिल जो है वो उसके पंपिंग का एक जो है वो स्पीड डिफरेंट होती है। वो अगर 72 टाइम बीट कर रहा है तो वो तो जो हमारा जिसम का दिल है वो यू बीट करता है, लेकिन जो रूहानी कल्ब है वो बहुत स्पीड से बीट करता है। ये बिल्कुल यू फील होते जैसे कुछ हिल रही है। ऐसी कैफियत इसके दिल में होने लग जाती है जो समझे एक खास किस्म की गुदगुदाहट, एक खास किस्म का मजा उसके दिल में आना शुरू करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी को ये फील हो। अच्छा जब हम साइंस पढ़े हुए ना तो हमारे दिमाग हर वक्त साइंस पढ़ने चलता है। जब लड़की का कर्ज करने लग जाए तो इंसान बाद समझता है कि मुझे किसी भी तरह से अपनी चेक करवाना चाहिए, शायद मुझे कोई कंसिटेशन का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन जब लड़की का रूम फल करने लग जाए हेल्थ क्या करेगा फिर वो है? फिर तो साइंस फेल, फिर तो उसको मानना पड़ेगा जी। ये तो कुछ और चीज भी है। अब उसके असल जो है जो हर वक्त उसका से चलती है, अब वो कहेगा वो कहने भाई जो और भी मामला है। तो अच्छा अब ये जरूरी नहीं कि हर आदमी को ये हरकत महसूस होगी, ये भी जरूरी नहीं। बल्कि क्या होता है कि किताबों में यूँ लिखा है कि कल्ब का जारी होने का मतलब ये है कि एक दिल के ऊपर शरीयत का राज हो जाएगा, शरीयत जारी हो जाएगी। यानी इंसान का दिल चाहने लग जाएगा कि मैं अब शरीयत की साझेदारी करने चाहता हूँ। और असल यही जो मौजूद है वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबानी फरमाते हैं कि बाद लोगों को ऐसी कल्बी तहसीलात दे देते हैं जिसको आप दूसरे रंगों में यूँ समझे कि अगर किसी को किसी के साथ मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत होते ही वो कहता है कि तुम मेरी तो जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना, उसके अंदर एक अजीब किस्म के जो है ना वो कल्बी तहसीलियत, दिल का धड़कना है जी, और बस ख्याल आते ही अपने महबूब का दिल धड़कना शुरू हो जाता है कि ये जो मजा उसको लगा होता है ये उसकी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, कैफियत को पाने के लिए होता है। ये इंसान को जिक्र अज़कार की मेहनत से जमाने के लिए बाद अल्लाह ताकि ये बंदा जो है वो जिक्र अज़कार में मजा रहे, उसको मजा लगा रहे। ऐसे ही जो बच्चे खाते हैं इसलिए उनकी जबान को मजा लगा होता है, اور اگر دل کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے مزے لگا دیں تو پھر بندہ یہ ذکر اسکار کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات انسان یہ کہتے ہیں کہ ہم گھنٹوں مراقبے کرتے رہتے ہیں, اتنا مزہ آتا ہے کہ پھر وہ نہیں چاہتا. اب کون ہے کہ ان کو یہ جتنے گھنٹے مراقبے کرواتا ہے, تو پھر منٹوں سے بات نہیں بنے گی. اگر تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی معرفت کو حاصل کروں تو پھر اس کو گھنٹوں مراقبے کرنے پڑیں گے. تو ہمیں اس بات کو سمجھ جانا چاہیے اور اس چیز کی بھی محنت کرنی چاہیے. اب یہ علم حال ہے, علم کال نہیں ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے سمجھائیں. ٹو پلس ٹو کرنے والی بات نہیں ہے, یہ مزہ چکھنے والی بات ہے. اگر مزہ چکھنا ہے تو کچھ ایسا لگا کے دیکھ لو. اگر آپ کے اوپر خود ہو کے کیس قائم ہو جائے اللہ کی محبت کی, تو بس آپ کی جو آپ کو دور ہو گئی. ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں گھنٹوں باتیں کرتا رہا ہوں, آپ کو یہ تصوف کی باتیں پلے کرتا رہا ہوں, تو یہ صرف باتیں ہوں گی, معلومات ہوں گی, اور معلومات سے بات نہیں بنے گی. لہٰذا اس کو جگہ کا جنا بھی ناسمجھداری والی بات ہے. اس کو کریں اور پھر اس کو مزہ پائیں, اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ ہاں بھی واقع ہمیں لڑ سکتی. اصلاح کے لیے مختلف چیزیں الحمدللہ مختلف راستے ہیں. ان راستوں میں سے یہ ایک راستہ ہے. مطلب ایک آدمی جتنا ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں کہ طلبا جب مدارس میں پڑھتے ہیں اور وہ جب جان لیتے ہیں کہ بھائی جھوٹ بولنے کا یہ نقصان ہے, چوری کا یہ نقصان ہے, غیبت کا یہ نقصان ہے, تو وہ سکون لیتے ہیں کیونکہ ان کی انٹرنیٹ چل جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر فیٹی فوڈ کھائیں گے کولیسٹرول ہائی ہوگا, اور کولیسٹرول ہائی ہوگا تو ہارٹ اٹیک ہوگا, اسٹروک ہوگا. اب یہ انتظار کرتے ہیں, جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ مزے مزے کا کھانا ہے اور بھی دیسی گھی ڈالو اس میں اور بھی مزے مزے اس میں دو, ہمیں خوش ہوتے ہیں, اچھا لگتا ہے. کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا. تو معلوم ہونے سے انسان پرہیز کرتا ہے. اس لیے پر کر لیا کہ بھائی معلوم کرنا چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. اصل میں عالم وہی بڑا ہوتا ہے جو چیزوں کے مظاہرات یعنی ان کی رخان کا اس کو پتہ چل جاتا ہے, اور وہ اس کا مسئلہ حاصل کر دیتا ہے, وہی بڑا عالم ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح اصلاح کے لیے الحمدللہ ایک عمومی اصلاح کے لیے آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کا کام ہے. اب دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر جو انسان تبدیل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے, اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد کے ماحول میں رہتے ہیں, اور مساجد کے اندر کچھ فرشتے ہوتے ہیں, اور فرشتوں کی لیول سے انسان کی روح کو ہٹا ہوتا ہے. جب فرشتوں کا ماحول ہوگا یہ عالم عمل کی جی ہے, اور فرشتے بھی عالم عمل کے ہیں. لہٰذا جب ایسی محفلوں میں وہ مستقل رہتے ہیں مسجدوں کے ماحول میں, تو ان کی یہ روحانی ترقی ہونی شروع جاتی ہے, اور اس ماحول سے پھر ان کے اندر کیونکہ وہ پھر بات بتاتے ہیں کہ کمائی سنت کرو, تو اب اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ اس ماحول سے ہٹتے ہیں تو اب یہ ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے, کیونکہ وہ اس ماحول میں رہنا ان کے لیے لازمی ہوتا ہے. کیونکہ کام کے ہاتھ جو محنت کروائی جاتی ہے اس کے اندر کچھ ذکر اذکار سے کروائے جاتے ہیں, اور ذکر اذکار سے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس کی روح مضبوط اسی کے لیے آتی ہے, اور وہ نفس کو قابو کر لیتی ہے, और किस की वजह से उसकी प्रक्रिया हो। अब इस मंदिर से प्रक्रिया हो गया अलहमदुलिल्लाह। अब इसको भी हाल करनी पड़ेगी। पहले दर्जे में हम कहते हैं इसको नस्बत काफी काफी होती है। जब वो अल्लाह वालों की सोबत में आके बैठता है तो आए उसको फिर ये नस्बत ही बनती है। ये सब है कि वो अपना जिला छोटा से बढ़ा के लगा है, कैंडल से कैंडल जला देता है। अब इसके पास भी थोड़ी सी लाइट होती है, लेकिन अगर हवा चलेगी तो कैंडल खुल जाएगी। फिर जब वो अपना छोटा रहता है तो फिर उसके बाद नस्बत नहीं रखी होती है। इसको कहते हैं कि जारी पानी को कहा हुआ, यानी जो मतलब ये इसी से लगता है कि ये तलबवाद होती है। अब ये मुझे खुशी रहती है और उसकी वजह से ये काम करता है। और जब तक ये जी के काम को आगे बढ़ाता रहता है, अब ये जारी पानी कुछ होता है, पीछे से उसको लिखकर जरूर आ रहा होता है, आगे ये उसको बढ़ा रहा होता है, चला रहा होता है। इसकी वजह से अब अलहमदुल्ला जारी पानी के अंदर अगर भी जल्दी आ भी जाए तो वो खैर नहीं है, बल्कि वो इसी वजह से उसको दिखा रहा होता है। बहरहाल हमारे पास निजाम है प्रक्रिया का जो हमें बताए थे। हम हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम वो सारा अवेलेबल है, हमारी मर्जी है हम कहेंगे कि जो चीज जो बनाए थे अल्लाह रब्बुल्लाह ने हमारे काम के अंदर रखा हुआ है वो ऐसा ऐसा गौर करेगा और इंशाल्लाह वो याद रखी हो जाएगी। यानी कि जिसके बारे में कहा जो मकामों में ये नसीब हो जाएगा वो माफ जहाँ कहेंगे अब तरह मैं अब वही की कैसे नसीब हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल ज्यादा शरीर है ये मकाम से इंसान को खुशी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इंतकाब के दौरान हजरत ने यूँ समझे दस दिनों में, अगर मैं यूँ कहूँ कि दस बार ये कहा कि भाई मुराकबा करो मुराकबा करो मुराकबा करो। मुराकबा हमारे अखबार है, बाकी जिक्र अखबार है। यानी हम कहते हैं कि मुराकबा करो और उसके साथ बताया जाता है कि भाई आप सबकी भी करेंगे भी करेंगे भी करेंगे। ये सारी चीजें क्या है जिक्र कारण है, इनसे इंसान सवाल होता है, सफार करता है और उसके खाने से काम करने से आम है। लेकिन सबक क्या है हमारा, यानी कि जो हमारी असाइनमेंट है वो क्या है, भी पढ़ लेते हैं, मुशी भी पढ़ लेते हैं, क्रांति की तलावट भी कर लेते हैं, सबक भी ला के बैठते हैं, जब तक साल गुजार लेते हैं कैसे रखेंगे, कैसे आप सीखेंगे। वो खुद नहीं होता, वो इतना होती नहीं है कि इंसान के अंदर से दिए की मोहब्बत चली जाए, गजब उसके काबू में आ जाए, उसके अंदर से हिस्स समा लालच सिखाई से सीख जाए। नहीं होती वजह क्या है कि वो जो असाइनमेंट है जब साफ से ताल्लुक होता है, लेकिन वही का वही खड़ा होता है यहाँ पर, वजह क्या होती है। अगर हम बंधु के हाथ बीच में बताया जाए, लेकिन बीच में बनाते नहीं, असल में ये घंटों करने वाला काम है। लेकिन बात उसके लिए घंटों बैठ के अल्लाह की याद में रह रहेगा, फिर कहीं जाकर मिले इन घंटों के लिए जवाब इरादा करो इन काम को। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बरसात की नियमत है
आपको बैंक में मिलनी है, सारी किताबें देनी है, उन सारे इस्लाम को आप पलट के देख लें। अल्लाह वाले हर दौर में मौजूद थे और अल्लाह इस्लामत तक जो है उसमें खत्म हो जाए, जरूर जरूर कोई ना कोई जरूर हो गए जो खूब कर अल्लाह तला से मांग करते हैं, जिसके बारे में समझाया कि मैं इससे राजी मुझसे राजी और आज उसके साथ मेरा नदी को पाना हम सब कुछ और उसके लिए बहुत आसान सुविधा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुद से नहीं बनाया बल्कि कुरानो हदीस ये बातें करके हमें बता दी। जैसे इसी तरह जैसे बाकी उलूम है मसलन असूल फिक्र है, हदीस मुबारक के तमाम जो तदवीन है उसके बनाया ना इस्लाम ने तो आके नुरानी फायदा नहीं दिया ना कि भाई इससे ये सब पढ़ोगे आज के दौर में बनने के लिए वो कुरान पढ़ाना हो तो नुरानी फायदे पढ़ाएंगे ना जरूरी है कि आज बोला एक मुसलमान हो हम क्या करेंगे जिले लोग हमसे अमल करो उनके एक आप जो है सिस्टम बना हुआ है सब जाते वो लड़को हाथ से चलता है और वो आने चलाता है। इस तरह इलम के मामले में अल्लाह वाली देखी सक्रिय की मेहनत मसाज की बीमारी है और अल्लाह तला ने उसके किया ताकि ये बात कल चला को कोई ये न कहे क्योंकि हमें तो पता ही कुछ नहीं था, बस वो जाते थे हर महीने तकलीफ खुल के आ जाते थे माशाल्लाह हम लोग बातें होती थी और 10 साल हो गए कि हमारा में तो नहीं आई, हमें तो पता नहीं थी क्या करना है क्या नहीं करना, अब हर एक को बड़ी बात वाजी हो गई है अब अमर करना न करना हर एक लिहाजा वक्त क्या है और फिर उसके बाद बाकी इसी तरह से करेंगे आपको भगवान कर लेकिन दुकान है दुनिया दो सौ सुनने में सेहत तक के लड़की व्यक्ति आदमी को